परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, आपको मसीह यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम लुका रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने लुका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 16 पद तक देखा था। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों पर धन्य या आनंदित होने का भेद प्रकट किया, जो आपके और मेरे लिए भी अत्यधिक व्यवहारिक शिक्षा है, वरन निराश न होने का कारण है। इसके बाद हम देखेंगे कि यीशु चंगा करता है और पुनर्जीवन भी देता है। हम लुका 6 अध्याय उसके 17 से 19 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत तेरे लोग, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूं, जब हमारा प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था, तब असंख्य मनुष्यों ने अपने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई थी। उसने न तो किसी पर हाथ मारा और न ही कोई आगे गिरा और न पीछे गिरा। किसी भी रोगी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। कभी कभी तो उसने दूर से ही कह दिया और रोगी स्वस्थ हो गया। यीशु द्वारा दी गई रोग मुक्ति सच्ची थी और डॉक्टर लुका उसे सत्यापित करता है। आप अपनी समस्या को सीधे प्रभु यीशु के पास ले जाएं, जो एक महान वैद्य है, और वह आपसे पैसा भी नहीं लेगा। यीशु का यह उपदेश जो यहाँ दिया गया है, वह मैदानी क्षेत्र का है, जबकि मत्ती के वृत्तांत में ऐसा ही उपदेश पहाड़ी पर दिया गया था। इससे प्रकट होता है कि यीशु किसी विशेष शिक्षा को बार बार सिखाता था। इस उपदेश की विशेषता यह है कि यह मत्ती द्वारा लिखे गए उपदेश से भिन्न है। इसमें कुछ बातें नहीं है जो मत्ती के सुसमाचार में व्यक्त की गई है, और कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो मत्ती के वृत्तांत में नहीं है। इसमें आशीषों का उल्लेख है तो हाथ का भी उल्लेख है, मानव व्यवहार का वर्णन है और न्याय का भी चर्चा किया गया है। हम लुका 6 अध्याय उसके 20 से 22 पद में पढ़ते हैं, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे वैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यहाँ तक का उपदेश वैसा ही है जैसा मत्ती के वृतांत में है। यीशु कुछ शिक्षाओं को बार बार दोहराता था, परंतु भिन्न भिन्न रूप में। पद 23 से आरंभ करके एक नया विचार हम पाते हैं। 23 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। मित्रों, यह पद मनुष्य द्वारा परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के साथ किए गए व्यवहार का उल्लेख करता है। सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर की वाणी सुनता था, परंतु उसे कष्ट दिया जाता था। आडंबरी भविष्यवक्ता अर्थात झूठा भविष्यवक्ता मनुष्य को सुनने में अच्छी लगने वाली बातें कहता था, अतः उसे मनुष्य का संरक्षण प्राप्त होता था। भविष्यवक्ता को परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए और आत्मविश्वासी होना चाहिए। उसे देखी हुई वस्तुओं से परे अनंत बातों को निहारना चाहिए। इसी से मनुष्य परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ बना रहेगा। हम पद 20 से 22 में यीशु के द्वारा दीन, भूखे और दुर्बल मनुष्यों के विषय में कहते हुए सुनते हैं। कि मनुष्य उनसे घृणा करता है, उनकी निंदा करता है, उन्हें समाज का अंग नहीं मानता है, उन्हें बुरा कहता है। आप पुराने नियम में देखें तो वहां ऐसा ही पाएंगे। आज का समाज भी ऐसा ही है। परमेश्वर के वचन का प्रचारक दुख उठाता है। यदि वह दुखों का सामना नहीं करता है तो कोई न कोई समस्या अवश्य है। झूठे भविष्यवक्ता धनवान थे, आज भी हैं, और उनके पास बहुत भोजन वस्तुएं थी। वे प्रसन्न रहते थे और भले मनुष्य माने जाते थे। उनके लिए प्रभु अपने विचार इस प्रकार से देते हैं। लूका 6 उसके 24 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो क्योंकि भूखे होगे, हाय तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि शोक करोगे और रोगे, हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहें क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे वैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। यहां पर हम पाते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता को संसार संरक्षण देता है। यदि वह मनपसंद बातें करता है तो संसार उसे बहुत कुछ देता है, परंतु प्रभु यीशु स्पष्ट कहता है कि उसे परमेश्वर से प्रतिफल पाने की आशा नहीं है। वह संसार में गणमान्य है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्मी है। संसार में वह आनंद का कारण है परंतु स्वर्ग में उसके कारण दुख मनाया जाता है। उसकी देह हृष्ट पुष्ट है परंतु उसकी आत्मा कुपोषित है। आज ईश्वर रहित या अभक्त धनवानों को कोई कुछ भी नहीं कहता, परंतु प्रभु यीशु के पास कहने को बहुत कुछ है। वो कहते हैं, हाय तुम पर जो धनवान हो क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। प्रिय मित्र, एक छोटे चोर की जान के दुश्मन सब होते हैं, परंतु ईश्वर रहित ये छोटे चोर अभक्त धनवानों के तुले खतरनाक नहीं है। अभक्त धनवानों ने ईश्वर त्याग को सौंदर्य प्रदान किया है। धनवानों से बढ़कर आडंबर और झूठी बातें किसी में नहीं है। वे झूठे भविष्यवक्ता को आराधना में प्रवचन करने के लिए बहुत पैसा देते हैं। वे कलीसिया और उसकी संपदा पर अधिकार रखते हैं। धनान्य कलीसिया कहीं भी सुसमाचार की कलीसिया नहीं मानी जाती है। वहां सच्चा सुसमाचार नहीं सुनाया जाता है। यदा कदा ही ऐसी कलीसिया सुसमाचार पर आधारित होती है। मैं तो यह नहीं जानता, परंतु न्यूयॉर्क नगर में एक समृद्ध कलीसिया है जिसका नाम किसी धनवान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। वहां सुसमाचार प्रचार का स्वागत नहीं है क्योंकि उन्हें भय है कि याकूब की नाई कोई उस धनवान मनुष्य को हाय न दे, जैसे याकूब ने याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 1-3 में कहा, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। मित्रों, मैं मनुष्य के मन को मानता हूं। क्या किसी का मन प्रभु यीशु के लहू में धुला है? यदि हाँ तो वह मेरा भाई है, मैं उसके साथ अनंत जीवन तक वास करूंगा। अतः मैं यही पर उसके साथ जीवन जीना सीख लूं जिसका मन काला है। वह मेरा भाई नहीं। मुझे क्षमा करें, मेरी बातें जलन उत्पन्न करती है, परंतु यीशु ने यही कहा, मेरे मित्रों अनेक जन हैं जो यीशु के अनुसरण का दावा करते हैं परंतु वे वास्तव में ऐसा करते नहीं। इस अध्याय को पढ़ें और देखें, यह आडंबर का पर्दाफाश करेगा। इस उपदेश से अपने जीवन की तुलना करके देखें कि आप कितने पानी में हैं। हम लूका 6 अध्याय उसके 31-46 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देख कर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन से भले भंडार से भली बातें निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मेरे मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि मानवीय सराहना का अभिलाषी पास्टर या पादरी पाप पर प्रचार नहीं करेगा। अनेक प्रचारक आज पाप को परमेश्वर के विरुद्ध अपराध नहीं कहते, वे यह कहते हुए भी डरते हैं कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और यह वह युद्ध का परमेश्वर है। परमेश्वर की दृष्टि में उचित रहने के लिए आप अहंकार घमंड को उचित नहीं कह सकते। आप पाप के प्रति पाप को मुस्कुराकर नहीं देख सकते हैं। आप दर्शन शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकते। एकमात्र स्थान है क्रूस। परमेश्वर मसीह यीशु में आपको नया प्राणी बनाता है। इस उपदेश का यही सारांश है। यह पहाड़ी उपदेश का अनुपूरक है। यह संदेश प्रभु यीशु ने अनेक बार अनेक स्थानों में अनेक प्रकार के मनुष्यों के बीच में सुनाया, और अंत में प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं जिसे हम लूका 6 अध्याय के 47 से 49 पद में पढ़ते हैं। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नेव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे मित्रों, चट्टान पर बनाया गया मकान या घर खड़ा रहा और रेत में बनाया गया मकान गिर गया। इसका अर्थ यह है कि मैं पापी हूं और मुझे मसीह यीशु जो चट्टान है उस पर आधारित रहना है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मेरे मित्र, आप किस पर नींव डाल रहे हैं? चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है या रेत में? यदि आप इस उपदेश को पढ़कर यह न समझ पाए कि आप नरक जाने वाले पापी हैं, तो आपके लिए दुख मनाता हूं। सुसमाचार स्वीकार करने वाला मसीह अर्थात ठोस चट्टान पर घर बनाता है। उसके पास आओ और उस पर विश्वास करो। वह बिना मोल के उद्धार देता है। वह आपको भी दे सकता है। मित्रों, यहां पर हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है और अध्याय 7 आरंभ होता है, और अध्याय 7 में हम देखेंगे कि यीशु सुबेदार के दास को चंगा करता है, एक विधवा के एकमात्र अर्थात एकलौते पुत्र को मुर्दों में से जिलाता है, और किसी फरीसी के घर में संदेह दूर करने के लिए दो कर्जदारों का दृष्टांत सुनाता है। यहां देखेंगे कि यीशु ने सुबेदार के दास से संपर्क नहीं किया, दूर ही से उसे चंगा किया। केवल लूका इस विधवा के पुत्र के और याइर के पुत्री की पुनर्जीवन की घटना को लिखता है। लूका ने यीशु के द्वारा कहे गए 18 दृष्टांतों का उल्लेख किया है जिन्हें अन्य लेखकों ने नहीं किया है। इस अध्याय में पहला दृष्टांत है, यीशु सुबेदार के सेवक को चंगा करता है। अध्याय 7 उसके 1 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सुबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने के लिए उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर ना था तो सुबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि रोमी सेना हर एक क्षेत्र में फैली हुई थी। 100 सैनिकों पर एक अफसर होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूबेदार यीशु में आस्था रखता था, अर्थात विश्वास करता था। उसने यहूदियों के लिए आराधनालय बनवाया था जिससे उनके प्रति उसका लगाव प्रकट होता है। वह जानता था कि अधिकार क्या होता है, क्योंकि वह किसी सैनिक से कहता यहां आ तो वह उसकी आज्ञा का पालन करता था। उसका अंतःकरण स्वीकार करता था कि यीशु में ऐसा अधिकार है। अतः उसने यीशु से कहा कि उसका आदेश मात्र ही उसके सेवक की चंगाई के लिए पर्याप्त था। उसकी इस बात पर यीशु को आश्चर्य हुआ। केवल 2 बार यीशु आश्चर्यचकित हुए थे, इस सूबेदार के विश्वास पर और इसराइल के अविश्वास पर। अब हम आगे देखते हैं, 9 की विधवा के पुत्र को जीवन दान देना। लूका 7 अध्याय उसके 11 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, थोड़े दिन के बाद वह 9 नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मित्रों, इस घटना का विवरण केवल लूका रचित सुसमाचार में ही पाया जाता है। कुछ लोग इस घटना को पुनरुत्थान भी कहते हैं, परंतु वे वास्तव में नहीं थे। यह देह की पुनर्जीवित करना था। प्रथाओं के अनुसार लाजर को यीशु ने मृतकों में से जिलाया था, तो उसने पूछा कि क्या वह फिर से एक बार मर जाएगा। यीशु ने उसे कहा कि निश्चय ही वह फिर मरेगा। इस कारण लाजर फिर प्रसन्न दिखाई नहीं दिया। आज तक पुनरुत्थान केवल एक ही मनुष्य का हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। वह मृतकों में से जी उठने वाला पहला फल है। केवल उसी को महिमा की देह प्राप्त है। एक दिन उठाए जाने के दिन मसीह में जीवित एक मृतक विश्वासी महिमा की देह के साथ उठा लिए जाएंगे। यह पुनरुत्थान की देह कभी नहीं मरेगी। मेरे मित्रों, यह घटना मर्मस्पर्शी है, क्योंकि वह स्त्री विधवा थी और उसका एक ही पुत्र था जो मर गया। यीशु 9 नगर से जा रहा था और इस युवक का जनाजा अर्थात अर्थी निकल रहा था। मेरे विश्वास में मसीह ने अनेक मुर्दे जिलाए थे, परंतु हमारे पास 3 ही का लेखा है। संभवतः ये तीनों घटनाएं उन सब पुनर्जीवित मनुष्यों का प्रतीक है जो इन 3 आयु वर्गों में आते हैं, बच्चा, युवा और वयस्क। यीशु ने उस असहाय स्त्री के कारण इस युवक को जिलाया। मुर्दों को जिलाने में यीशु ने सदैव एक ही विधि अपनाई, उसने उन्हें छूकर सीधा आदेश दिया। विश्वासियों के उठाए जाने के समय भी यीशु की वाणी सुनाई देगी। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16-17 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। प्रिय मित्र, यीशु की वाणी उस दिन प्रधान दूत की नाई और परमेश्वर की तुरही के समान कर्णभेदी होगी। उसकी एक ही आवाज उसके विश्वासियों को जो मृतक हो गए हैं जगा देगी। यीशु ने केवल मृतकों को जिलाने के लिए सदैव एक ही विधि अपनाई, शेष अन्य सब चमत्कारों में उसने अलग अलग विधियों को अपनाया है। मेरे मित्रों, यह सच है कि जो मसीह में मर गए हैं वे मसीह में जीवित किए जाएंगे, अर्थात वे भी प्रभु यीशु की तरह महिमामय जीवन को प्राप्त करेंगे। यदि आज आप मसीह में नहीं हैं, तो आपके लिए मौका है कि आप भी प्रभु के पास आएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, उसे अपने जीवन में स्वीकार करें और निश्चय जानें कि वह आपको अपने आशीष देंगे ताकि आप भी उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस वचन के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना खुशी देनी चाहिए तुम के अलावा कुछ ना दिया, कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए तुम के अलावा कुछ ना दिया, फिर भी
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने सहारा बना अपने पास मुझे बुलाया, इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह।